Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत.
जी, धन्यवाद.
चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस.
फर्स्ट द हेडलाइंस. China hits out at US over new tariff announced by President Donald Trump, says Washington's move a display of double standards. FPIs invest over 1,700 crore rupees in Indian equities last week. And domestic markets to focus on US-China tariff news, corporate earnings results and inflation data for Qs next week.
चीन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए टैरिफ को लेकर अमरीका पर निशाना साधा. कहा वाशिंगटन का ये कदम दोहरे मानदंड का प्रदर्शन है. एफपीआई ने पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों में 1,700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और अगले सप्ताह देश के शेयर बाजारों का ध्यान अमरीका चीनी टैरिफ समाचार, कॉर्पोरेट आय परिणामों और मुद्रास्फीति के परिणामों पर होगा.
The views and opinions expressed by the experts on this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. First, in this edition of Market Mantra, let's start with the headline story. China has hit out at the US over its decision to impose 100% tariffs on Chinese goods, calling Washington's move a display of double standards. The reaction came after US President Donald Trump announced additional levies set to take effect from November the 1st in retaliation for what he termed as China's extraordinarily aggressive new export restrictions on rare earth minerals. Washington also threatened to cancel a planned meeting with Chinese President Xi Jinping later this month. In a statement, China's Ministry of Commerce said China released export control measures on rare earths and related items, which are normal actions taken by the Chinese government in accordance with laws and regulations to refine its own export control system. Beijing accused the US of ratcheting up economic measures against China since September.
गाजियाबाद से हमारे साथ प्रणव जुड़ रहे हैं. कृपया अपना सवाल पूछिए प्रणव.
हेलो, गुड इवनिंग टीम. सो मेरा क्वेश्चन है कि अभी एसबीआई ने एक नया फंड लॉन्च किया है जो कि है मैग्नम एसआईएफ फंड. सो मेरे को ये जानना है कि ये फंड अभी जो करंटली म्यूचुअल फंड चल रहे हैं उनसे कैसे कितना डिफरेंट है एंड इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड है कि नहीं. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि हमारे एक्सपोर्ट्स का निफ्टी पे क्या व्यू है लाइक इन द अपकमिंग डेज और अपकमिंग मंथ्स. थैंक यू
प्रणव. जो आपका पहला सवाल है एसबीआई का मैग्नम एसआईएफ फंड, सो ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, एसआईएफ है, जो कि अभी कुछ ही समय पहले सेबी ने इंट्रोड्यूस करे है और अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे फंड हाउसेज इनको लॉन्च करना शुरू कर चुके हैं. एक आपने एसबीआई का नाम लिया, इसके अलावा हमारे पास एक क्वांट भी और एक दो फंड हाउसेज के और भी है. इनमें देखिए जो एक बेसिक डिफरेंस है म्यूचुअल फंड्स और एसआईएफ्स में, वो ये है कि जो एसआईएफ्स होते हैं इनको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करने के लिए छूट मिल जाती है। म्यूचुअल फंड्स में यूजली इतना ज्यादा नहीं होता, अगर होता है तो बहुत ही उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है, हेजिंग पर्पसेस के लिए खाली आप यूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, बट एसआईएफ्स में वो नहीं होता, वो थोड़ी सी छूट मिल जाती है। इसमें जो एक बहुत ही अहम चीज है जो कि आपने खुद ही एक तरीके से अंडरलाइन कर दी कि इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, तो अभी इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एज सच कुछ नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो एक आम निवेशक के लिए ये अच्छा रहेगा कि अभी कुछ समय बहुत जल्दबाजी ना करे, अभी अगर कुछ भी निवेश करना है तो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स है ही, और इनमें बस कुछ थोड़ा सा और डिफरेंस आ जाता है, एक टिकट साइज बढ़ जाता है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए की होती है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि अभी एकदम जल्दबाजी ना करे, कुछ समय दीजिए इसको, एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करने दीजिए और फिर जो वो नंबर्स हैं वो देख के असेस करके फिर इसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचिए। वहीं एक आपने दूसरा सवाल और पूछा था कि निफ्टी पर क्या व्यू है। देखिए निफ्टी या सेंसेक्स जो भी इंडियन इक्विटी मार्केट है वो मेरी समझ में जब तक कि लॉन्ग टर्म व्यू आप रखेंगे कि 5 साल से ज्यादा का होराइजन रखेंगे तो एक अच्छा व्यू है। ये इसके जो एक निफ्टी की परफॉर्मेंस है जो सेंसेक्स की या जो भी इंडिया के ब्रॉडर इक्विटी इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है इंडियन इकोनॉमी पे। तो जब तक आपको इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भरोसा है तो इसका मतलब है कि हमारे को निफ्टी में निवेश करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप मत सोचिएगा बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब तक आप इंडिया एक इकोनॉमिक पावर की तरह आप उसको देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आपको लगता है कि अच्छा होगी तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं।
आकार जी, आई बिलीव देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स आउट देयर हु ट्रूली विश टू नो अबाउट एसआईएफ एंड आल्सो विश टू इन्वेस्ट इन इट, बट वी हैव टू सी हाउ द फंड ऑपरेट्स इन द कमिंग डेज एंड हाउ इट परफॉर्म्स स्लोली। व्हाट आर योर व्यूज ऑन द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ दिस न्यू कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ इफ यू कुड नो?
Yeah, absolutely. As I just said, we need to wait and watch. Let them build the history a little bit and then see how they actually perform for a retail investor.
All right. And we are joined in by another caller. We have Pritham from Delhi. Pritham, welcome to the show. Please ask your question.
Hello.
हेलो प्रीतम
जी, मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग कोई नियम होते हैं क्या? प्राइवेट बैंक में अगर म्यूचुअल फंड लिया जाए या सरकारी बैंक पे तो क्या इनकी कमीशन अलग तरीके से होती है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि एलआईसी जो अकाउंट्स होते हैं वो कितने अमाउंट से खुले जाते हैं, जिसको ये प्रीमियम अकाउंट बोलते हैं एलआईसी अकाउंट के लिए, ये प्राइवेट में अलग होता है और सरकारी में अलग होता है, ये दो अलग अलग कन्फ्यूजन है, कृपया करके बताएं।
जो आपका पहला सवाल था, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक में से क्या म्यूचुअल फंड्स खरीदने का जो एक मेथड है या उनकी जो कमीशन है उसमें डिफरेंस होता है? तो देखिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो सेम रहता है, वो चाहे आप किसी प्राइवेट बैंक में जाए या किसी गवर्नमेंट बैंक में जाए। जहां तक कि जितने जो सारे बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, वो आमतौर पे एक फंड हाउस के लिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, और जितने भी जो बड़े बैंक होंगे जैसे कि वो जहां तक के अपने ही ग्रुप के म्यूचुअल फंड हाउस को ज्यादा प्रमोट करेंगे। तो प्रोसीजर एकदम सेम रहेगा, एक आपका केवाईसी होता है, आपको बैंक डिटेल्स के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप जिस बैंक के साथ कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट आपका उसी बैंक के साथ हो, वो किसी दूसरे बैंक का भी हो सकता है। यहाँ पे केवल एक चालू बैंक खाते की डिटेल्स की जरूरत होती है, चेकबुक के कैंसिल चेक की, जिसमें कि जहां से पैसा आपका कटेगा एसआईपी के लिए और रिडेम्पशन के टाइम पे आएगा, तो प्रोसीजर सेम रहता है। बाकी जो आपका दूसरा सवाल था वो मेरी जान पड़ता है कि वो आप किसी बैंक अकाउंट के लिए बात करना चाह रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट के लिए। तो आमतौर पे मैंने देखा है कि हर बैंक के एक अलग अलग होते हैं, जैसे कि ये प्राइवेट बैंक्स में वो लोग उनके तरह तरह के वेरियंट्स होते हैं, कोई से अकाउंट में लोग कम मिनिमम बैलेंस रखते हैं, किसी में ज्यादा रखते हैं। बाकी इसके लिए बेहतर रहेगा कि आप जिस भी बैंक में खोलना चाह रहे हैं उनसे विस्तार में पूछें उन अकाउंट के बारे में, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, और वाकई में उन सारे बेनिफिट्स के या जो भी उसको एज अ फीचर्स वो करते हैं वो काफी सारे फीचर्स लिस्ट कर देंगे, लेकिन क्या उन सारे फीचर्स के आपको वाकई में जरूरत है? क्योंकि जितने ज्यादा फीचर्स होंगे कहीं हद तक वो जो एक मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, चार्जेस है, उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो देख करके अच्छे से फिर आप उसका चुनाव करें।
आकार, लाइन पर हमारे साथ और भी श्रोता जुड़े हुए हैं। मार्केट मंत्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। लिए चलते हैं आपको बेंगलुरु। बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयान। अयान, कृपया अपना सवाल पूछिए।
थैंक यू मैम। मेरा आकाश सर से दो सवाल है। आकाश सर, मेरा पहला सवाल ये है कि मैं एक थीमेटिक फंड में SIP कर रहा था ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से, और मैंने देखा कि वो फंड मुझे कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है एंड एक्सट्रीमली वोलाटाइल लग रहा है वो फंड मुझे देख के। तो मैंने वो SIP स्टॉप कर दिया और उस अमाउंट को दो फंड्स में, एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप फंड में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो आई वुड लाइक टू नो सर, इस पे आपका इंसाइट क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने रिसेंटली गोल्ड में एक छोटा सा अमाउंट और सिल्वर में एक छोटा सा अमाउंट SIP स्टार्ट किया है। तो इज दिस राइट वे टू बेसिकली डाइवर्सिफाई माई पोर्टफोलियो अपार्ट फ्रॉम मेरे अदर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स है? थैंक यू।
अयान, कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, सो you know, the basic thing that I would like to highlight over here is that give equities a little more time. You mentioned that, you know, you invested just 1.5 years back in one fund. So I really don't know what fund it was, and, you know, basis that I can't commit on its performance. But even for any particular fund, last 1 year in the equities market hasn't been that good. The equity markets haven't generated, you know, really good returns over the last 1 year. And that per se, the basic inherent nature of equities is like that only. For a couple of years, maybe a year or so, you know, they won't give any kind of returns, or maybe just flat returns, or maybe even dip and take your money to the negative terrain. But another year, they'll just zoom in, you know, giving very good returns. And going by that, you know, when you keep the equity for a certain period of time, for a certain number of years, so the total return averages. So, you know, from that perspective, I would say that you should give equities, you know, some time. And you have already, you know, invested that money in a flexi-cap and a multi-cap fund. Both funds category-wise are really good for a long-term perspective if you have a horizon of at least 5 years. The only thing that I would say is that don't redeem before 5 years. And it would be really good if you can, you know, also start an SIP if you have so far just invested a lump sum amount and, you know, can spare some amount every month. Because, you know, when you start investing through the SIP, you actually average the cost of purchase, which can, you know, actually help you get the benefit of compounding over the long term. Your second question about gold and silver investment. So definitely, yes, but I would say that don't look at them as a long term growth potential. Look at gold as, you know, a hedging part of your portfolio, because gold really shines whenever there is uncertainty in the market or, you know, equities fall. So don't let the commodities or the gold and silver part exceed maybe 5 or 10% of your total portfolio. From growth perspective, maintain the focus on equities. And silver is actually emerging in the past few days. The returns are really coming out to be good. Its demand has increased, you know, from all the semiconductor chips, which is actually pulling its demand, the price. But from that perspective, it is comparatively volatile. And we are yet to see over the, you know, how it actually pans out. But I would still say that for gold and silver, maintain only 5 to 10% of your portfolio. Rest, keep it in equity.
And before we move further with Market Mantra and all the questions of our listeners,
Market Mantra में आपका पुनः अभिनंदन। आरएस दहिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। दहिया जी, अपना सवाल पूछिए।
मैम नमस्कार टू Market Mantra टीम।
नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
I have two small questions. One is that is silver exchange trading for ETF fund is better or a multi asset fund is better for long-term growth or and the return wise?
So I would say both are different types of funds. When you're investing in silver ETF, you are only investing in silver because it will put your money purely in silver. That's it. When you're investing in a multi-asset fund, your money is getting divided into three asset classes, one being equity, the other one being fixed income, and the other one being a mix of gold and silver, mostly gold. So it is basically about that if you are looking for a well-diversified portfolio across asset classes without doing a much do and just in, you know, opting for just one fund, then you can very well go with a multi-asset fund, because over there, by just simply investing in one fund, you'll get exposure to all the three asset classes, equity, fixed income and commodities, gold or silver, whatever. But when you're investing in a silver ETF, then it is something like that. You're just investing in silver. So for a well-rounded portfolio, it is essential that if you're investing for the long-term perspective, you need to have equity in your portfolio. So in addition to the silver ETF, you will have to invest separately in an equity fund and as per your asset allocation requirement into fixed income as well.
And we are joined in by Mukund from Ahmednagar. Mukund, welcome
to Market
Mantra.
Thank you, sir.
Please.
All our Market Mantra team, good evening and happy Diwali.
Gee, good evening. Please ask
my
question, sir.
About PPF, SCSS and monthly income scheme in post office. I learned about the NRE is not applicable nominee for this particular account. After maturity of this particular account, amount credited some difficulties, say some people. Please inform me about proper this matter.
Mukunji, as per my knowledge, till a few years back, NRIs were not allowed to be named as a nominee for small savings schemes. But just a few years back, there was an amendment, a notification by the Ministry of Finance, and now NRIs are very much allowed to be a nominee of a small savings scheme. But
मार्केट मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है. बढ़ते हैं वैभव कुछ चंद खबरों की तरफ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव का पूरे देश में लाभ मिल रहा है. आइए सुने उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्योगों को सशक्त बनाने वाली जीएसटी सुधारों पर एक रिपोर्ट.
नए जीएसटी सुधार उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमों के लिए एक बड़ा बढ़ावा है. संशोधित दरों के तहत कई वस्तुओं पर अब कम कर लगेगा, जिससे स्थानीय उत्पाद अधिक किफायती हो जाएंगे और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा. यह सुधार राज्य के पारंपरिक शिल्प और कपड़ा क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व रखता है. कानपुर और आगरा के चमड़ा और जूता उद्योग, जिनमें 1,000,000 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, लाभान्वित होंगे, क्योंकि 2,500 रुपए तक की कीमत वाली वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगी. इसी तरह लखनऊ के चिकनकरी जैसे हस्त कढ़ाई की कृतियां उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे, क्योंकि इस पर सिर्फ 5% स्लैब रखा गया है, जिससे इन शिल्पों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हजारों कारीगरों को राहत मिलेगी. वहीं फिरोजाबाद के जीआई टैग कांच शिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कांच के बर्तनों और चूड़ियों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ये वस्तुएं 6-7% सस्ती हो गई हैं. संशोधित दरों के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाना और कारीगरों के मार्जिन में सुधार करना है, जिससे त्योहारों के मौसम और उसके बाद बिक्री, नौकरियों और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि सुनिश्चित होगी. समर्थ के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली.
ललितपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं HR गौतम. सवाल पूछिए.
नमस्ते मैम.
नमस्ते. सवाल पूछिए
मैम. हमारा ये सवाल है कि हम एक ब्रोकर के माध्यम से SIP करते थे, लेकिन अब हमने वो डीमैट अकाउंट जो था वो बंद कर दिया. उससे तो जो हमारी SIP चल रही थी, वो हमें क्या बंद करनी पड़ेगी कि हम उसको कंटिन्यू रख सकते हैं किसी दूसरी जगह?
नहीं, आप अपनी SIP देखिए, अगर डीमैट अकाउंट के थ्रू ही वो खोला गया था तो फिर बहुत संभव है कि वो SIP अभी नहीं चल रही होगी, क्योंकि वहां पे उस ब्रोकर के नॉर्मल रेगुलर प्लान में नहीं, बट वो डीमैट अकाउंट के थ्रू ही हुआ था. बट यहाँ पे बेहतर रहेगा कि जो भी आपका फंड हाउस है, जिस आपने एग्जैक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, आपके स्टेटमेंट में उसका फोलियो नंबर होएगा. आप एक दफा फोलियो नंबर लेकर के उस फंड हाउस के कस्टमर केयर पे संपर्क करें और उनसे एक दफा उसके बारे में जानकारी ले कि SIP अभी चालू है कि नहीं है, और अकॉर्डिंगली अगर होता है तो आप उसमें SIP का निवेश कर सकते हैं. बाकी आपका जो पैसा है उसमें एकदम सुरक्षित है, वो फंड हाउस के पास है, तो अगर उस ब्रोकर के थ्रू आपने डीमैट अकाउंट बंद भी कर दिया तो आपका पैसा एकदम सुरक्षित है वहीं फंड हाउस में.
And let's move on to a story about the markets. After rising for the second straight week, domestic benchmark indices are likely to focus on trade tariff developments, domestic macroeconomic data and corporate earnings results for Q's next week. Last week, the Sensex jumped to 1,294 points or 1.6% to end at 82,501 on Friday, while the Nifty rose 391 points or 1.6% to end at 25,285. The earnings season for September quarter officially started last week, with over 200 companies scheduled to release their financial results in the upcoming week. The government will release retail inflation, CPI, and wholesale inflation, WTI figures for September on October 13th and 14th. At the global front, investors will keep an eye on US-China trade tariffs after having imposing a second tranche of 100% tariffs on Chinese goods. The US administration increased the total FII activity levy on China to 130%. The US President Donald Trump announced that the additional 100% tariff on Chinese goods will come into effect on November the 1st, 2025. And Akar, we have heard the cues for the markets next week. What do you believe will be the cues for markets, and how will the markets react to all these scenarios at the global level?
See, I would say, that we should actually, look at whether the markets will go down or go up over the next week. We should have a long-term view. So, the very first thing whenever, we start thinking that how will the markets react over the next week, we get into a short-term terrain or, kind of that mindset that what will be the market or how will it look over the short term. But this is what we actually need to change when we invest in equities, because no matter what, whatever algorithms you, run or whatever you do over the short term, it's not possible to predict accurately. You may get right sometimes, but not always. So, and in that scenario, you might end up with a certain kind of losses, which will ultimately drive you out of the market. So the best way is to just be consistent and invest for the long term. Keep the horizon a little longer, at least 4 to 5 years when investing in equities.
Spoken truly like a market and a mutual fund expert when you said that we have to be on a longer term when we come to being an investor. Prachi, I guess you have more stories.
बिल्कुल, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ. पिछले 12 सप्ताह की लगातार बिकवाली के बाद विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs ने पिछले हफ्ते 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच 1,708 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे. वहीं दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों DIIs ने इस अवधि के दौरान 459 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे. सितंबर में विदेशी निवेशकों ने 23,885 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे थे. आकार, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी धन्यवाद.
Well, also before we wrap up, we have another story. Canadian Foreign Minister Anita Anand will arrive in New Delhi today on a 3-day visit to India. She will hold talks with External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar tomorrow and also meet the Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The meetings come as both the countries move toward establishing framework for strategic cooperation on issues such as trade diversification, energy transformation and security. Ms. Anand will also travel to Mumbai, where she will meet with Canadian and Indian firms working to support investment job creation and economic opportunity in Canada and India. And now, Akar, thank you so much once again
for
coming to Market Mantra and answering all the questions of our listeners. And now, before we close, a reminder of the headlines. China hits out at US over new tariff announced by President Donald Trump, says Washington's move a display of double standards. FPIs invest over 1,700 crore rupees in the Indian equities last week. And domestic markets to focus on US-China tariff news, corporate earnings results and inflation data for Qs next week.
चीन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए टैरिफ को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा. कहा वाशिंगटन का ये कदम दोहरे मानदंड का प्रदर्शन है. एफपीआई ने पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों में 1,700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का ध्यान अमरीका चीनी टैरिफ समाचार, कॉर्पोरेट आय परिणामों और मुद्रास्फीति के परिणामों पर होगा.
नमस्कार.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.